ఓం శాంతి. ఏకాంత ఔర్ ఏక రస్ స్థితి. హమ్ సభీ బ్రాహ్మణో కా లక్ష్య హై బ్రహ్మా బాప్ సమాన్ అచల్ అడోల్ ఏక్ర స్థితి కీ ప్రాప్తి కర్నా. ఏసీ అచల్ అడోల్ ఏక్ర స్థితి కో అనుభవ కర్నే కే లియే హమే ఏకాంత కా సహారా లేనా బహుత్ జరూరీ హై. జబ్ తక్ హమ్ ఏకాంత వాసీ నహీ బన్తే హై తబ్ తక్ ఏసీ గహన్ సాధనా హమ్ నహీ కర్ సక్తే హై. ఏకాంత వాసీ బన్నా అర్థాత్ पहला अर्थ है एकांत में रहना, साइलेंस में रहना, आवाज से परे स्थान पर रहना. और दूसरा अर्थ है एकांत अर्थात एक के ही अंत में खो जाना. हमारा लक्ष्य है जो बाबा हैं उनके ही याद में, उनके ही अंत में, उनके ही गहराई में खो जाना. तो एक के अंत में जब हम खो जाते हैं तो हमें बहुत कुछ प्राप्तियां, खजाने मिलती हैं और हम बहुत ऊंची साधना में सफलता प्राप्त करते हैं. तो जब हम एकांतवासी बनकर रहते हैं तो एकाग्रता का अभ्यास हमें सरल अनुभव होता है. और एकाग्रता के आधार से ऐसी एक स्थिति की अनुभूति हमें होती है. लेकिन हम देखते हैं वर्तमान समय हम सभी भाग दौड़ की दुनिया में भागते जाते हैं, सेवा में भी बहुत बिजी रहते हैं. एकांत में अगर हमें कोई बैठने के लिए कहता है तो हमें कुछ बंधन सा लगता है. तो जैसी रुचि हमारी मिलनसार होने में रहती है वैसी रुचि हमारी एकांतवासी बनकर रहने में भी होना जरूरी है. समय आने पर हमें एकांत में बैठने का अभ्यास बढ़ाना है. एकांत हमें जैसे कि खींचे अपने तरफ, तब हम ऐसी उच्च कोटि की साधना में सफलता प्राप्त करते हैं. अभी एक स्थिति की अनुभूति करना अर्थात एक से ही सर्व प्रकार के रस अनुभव करना. वर्तमान समय देहाभिमान का आत्मा पर प्रभाव होने से विभिन्न प्रकार के रस हमें आकर्षित करने लगते हैं. जैसे कि जीभ रस, नयन रस, कान रस, स्पर्श रस, ऐसे विभिन्न प्रकार के रस हमें अपने तरफ आकर्षित करते रहते हैं। जीभ रस अर्थात खाने में हमारी बुद्धि आकर्षित होती है, बहुत अच्छा टेस्टी खाना हमें खाना है, तला हुआ कहो या नमकीन कहो या विभिन्न प्रकार का खाने में हमारी बुद्धि भागती रहती है, अर्थात जीभ रस हमें अपने तरफ खींचता है। तो जीभ रस के भी हम कभी कभी गुलाम बन जाते हैं, उसमें थोड़ा आकर्षित होते हैं। कभी कभी कान रस दुनिया वालों ने संगीत बनाया है, लेकिन उस कान रस में हम कभी कभी फंस जाते हैं। संगीत का आधार हम लेते हैं, संगीत हमारी रचना है, हम रचना के अधीन हो जाते हैं और मैं रचता हूं ये भूल जाते हैं। तो कान रस भी हमें कभी कभी अपने तरफ आकर्षित करता है। और नयन रस बहुत सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के तरफ नयन आकर्षित होते हैं। कभी कभी बहुत कोई सुंदर व्यक्ति, रूपवान व्यक्ति को देखते हैं तो नयन आकर्षित होते हैं। तो ये व्यक्ति और वस्तु के तरफ या प्राकृतिक सौंदर्य के तरफ हमारे नयन आकर्षित होते हैं, हमें टेम्पररी उससे सुख जरूर मिलता है, लेकिन नयन रस के तरफ आकर्षित होने से जो हमें असली रस की अनुभूति करना है, परमात्मा की याद में हमें खो जाना है, उससे हम वंचित रहते हैं। स्पर्श रस भी हमें आकर्षित करता है। तो कहते हैं रसना जित ही जगत जीत बनते हैं। दुनिया के जो विभिन्न प्रकार के रस हैं, उसको जो जीतते हैं, उससे जो न्यारे रहते हैं, उस पर जो जीत पहनते हैं, वही जगत जीत बनते हैं। तो हमें एक रस स्थिति बनाने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। उसके लिए हमें क्या करना है, परमात्मा का ही गायन पारसनाथ के रूप में किया जाता है। हम भक्ति मार्ग में सुनते आए हैं, पारस के साथ अगर लोहा टच हो जाता है तो लोहा सोना बन जाता है। अब वो कौन सा पारस है भाई, वो कोई दुनिया में स्थूल पारस नहीं है, लेकिन बाबा जो पारसनाथ हैं, पारस हैं, हमारी आत्मा जो आयरन एजेड बन चुकी है, उस आयरन एजेड के संग में बाबा पारसनाथ जब आ जाते हैं तो ये आत्मा गोल्डन एजेड अर्थात सोने तुल्य बनती है। तो बाबा को हम पारसनाथ करके पुकारते रहे हैं। पारसनाथ का अर्थ है पा रस नाथ, वही एक ऐसे नाथ हैं जो सर्व रसों के भंडार हैं, सर्व रसों के खजानदार हैं। तो उनसे हम सर्व संबंधों का रस अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि द्वापर युग से हम देहधारियों के पीछे भागते रहे और विभिन्न प्रकार के रसों की अनुभूति करते रहे। वास्तव में ये दुनिया कैसी बन चुकी है, रस ना, कोई प्रकार का इस दुनिया में रस नहीं है, उससे हमें कोई रसना नहीं मिलती है, बासना नहीं मिलती है। केवल एक परमात्मा ही सर्व रसों के भंडार हैं। तो हमने द्वापर युग से बुद्धि को बहुत भटकाया, अभी संगम युग में हमें एक ठिकाने पर मन और बुद्धि को लगाने का पूरा प्रयास करना है, बुद्धि पर थोड़ा रहम करना है। तो जैसे अभी वर्तमान समय विदेश में बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, शॉपिंग सेंटर्स अर्थात ऐसे बड़े बड़े मॉल होते हैं जहां छोटे से लेकर बड़ी ते चीज एक ही जगह मिलती हैं। भारत में अगर हमें अलग अलग चीजें खरीदने होती है तो अलग अलग दुकानों पर जाना पड़ता है, जिससे हमारा समय भी वेस्ट होता है और संकल्पों का खजाना भी वेस्ट होता है। तो मेरा शॉपिंग सेंटर है बाबा, मुझे जो भी कुछ चाहिए मुझे एक बाबा से प्राप्त करना है, क्योंकि बाबा में वो क्षमता है सर्व संबंधों की, सर्व रसों की अनुभूति करने की क्षमता एक बाबा में ही है। इसलिए जो कोई संबंध रूपी बंधन हमें अनुभव होता है, वो विशेष संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करना है। और ऐसे संबंध अनुभव करते करते बाबा के साथ बुद्धि योग जोड़कर एक रस स्थिति की अनुभूति हम बढ़ा सकते हैं। अभी बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, मैं 24 घंटे आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हूं। अभी भगवान हमें कंपनी देना चाहते हैं तो हमें ये मौका सारे कल्प में एक ही बार मिलता है। सारे कल्प में तो हम आत्माओं के साथ रहें, विभिन्न देहधारियों के साथ संबंध निभाते रहें, लेकिन ये जो चांस हमें सारे कल्प में एक ही बार मिलता है, इसलिए दिल ऐसा कहता है क्यों ना हम परमात्मा से ही विभिन्न प्रकार के रस की अनुभूति करते हुए एक रस स्थिति का अनुभव बढ़ाते रहें। तो बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति हमें बढ़ाते जाना है। सर्व संबंधों की अनुभूति क्यों कहते हैं? बाबा कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम जो भक्ति मार्ग में गाते थे, बाबा कहते हैं मैं वो वायदा निभाने आया हूं, मेरे से जो चाहे संबंध आप अनुभव कर सकते हैं। अब सर्व संबंध बाबा से अनुभव करने का अर्थ वास्तविक रीति से क्या है? मान लीजिए किसी को माँ का संबंध खींचता है, किसी को बच्चे का संबंध खींचता है, किसी को पति का संबंध खींचता है, किसी को बच्चे का या अलग अलग संबंध खींचते हैं। तो बाबा से सर्व संबंध अनुभव करना अर्थात किसी का अगर बच्चे की तरह बुद्धियों खींचता है वो बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव करें, वहां से बुद्धि योग को डिटैच करें और बाबा से अटैच करें। किसी का पति के साथ लगाव है तो वो विशेष बाबा को पति के रूप में अनुभव करें। ऐसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग संबंध बाबा के साथ अनुभव कर सकते हैं। और दूसरी बात, हरेक व्यक्ति हरेक संबंध भी बाबा से अनुभव कर सकता है, क्योंकि अगर कोई संबंध हम मिस करते हैं बाबा से अनुभव करने का तो अंतिम समय माया हमें वही धोखा दे सकती है, वही संबंध हमें अपने तरफ खींच सकता है। इसलिए हम सभी को कहां जाना है? हाँ माताएं बहनें बोलिए, हमें कौन सी दुनिया में जाना है? मोहन की दुनिया में जाना है। मोहन अर्थात किसी व्यक्ति वैभव से हमारा मोहन न हो। ये कृष्ण का वो मोहन को रूप में पुकारते हैं, वो केवल ब्रह्मा बाबा की स्थिति की यादगार नहीं है, बाबा के साथ हम बच्चों की भी वो यादगार हैं। तो मोह को हमें नष्ट करना है अर्थात किसी भी व्यक्ति के तरफ हमारे बुद्धि का आकर्षण ना हो, किसी भी संबंध के रूप में ना हो। इसलिए बाबा को संसार अनुभव करते रहें, बस सर्व प्राप्तियां मुझे एक बाबा से ही अनुभव करते रहना है, ताकि मेरी बुद्धि इधर उधर न भागे। इसलिए बिंदु समझकर बिंदु बाप को हमें याद करना है, लेकिन बिंदु समझकर बिंदु बाप को याद कितना करेंगे भाई? एक घंटा दो घंटा करेंगे, उसके बाद वो अभ्यास में हमारी रुचि कम हो सकती है। इसलिए योगाभ्यास हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, उस योगाभ्यास में हमारी रुचि सदा बरकरार रहे उसके लिए बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते रहें, उस अभ्यास को बढ़ाते रहें, और योग के सब्जेक्ट में हमें मास्टरी लेना है। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात्रि तक विभिन्न संबंधों की अनुभूति हमें करते रहना है। अभी बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना अगर है तो उसकी विधि क्या है? हमने सारे कल्प में विभिन्न संबंधों की अनुभूति स्थूल देह के माध्यम से की है, प्यार लिया है दिया है, लेकिन संगम युग में अगर भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना है तो उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन मैंने रचा हुआ है आप बच्चों के लिए मेरे साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करने के लिए, तो हमें सूक्ष्म वतन को यूज करना है। मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप में सूक्ष्म वतन में हूं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप में हैं और मैं आत्मा शिव बाबा के साथ फरिश्ता स्वरूप के माध्यम से विभिन्न संबंधों की अनुभूति कर रही हूँ और स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूँ। जब हम एक रस स्थिति की अनुभूति करते हैं, एक से ही सभी रसों का अनुभव करते हैं, तो हमें किसी भी व्यक्ति वैभव के तरफ बुद्धि हमारी नहीं आकर्षित होती है। इसलिए बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति हमें करना है। सारे दिन भर में कम से कम 10 संबंधों की अनुभूति करते रहना है, अलग अलग समय पर। अभी सबसे पहले आंख अमृत वेले खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही बाबा को हमें परम पिता के रूप में अनुभव करना है। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर पिता के गोदी में बैठना है, गोदी में खेलना है और बाबा का आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करना है। हमारा लौकिक बाप से प्यार होता है, लेकिन लौकिक बाप का जो प्यार है वो स्वार्थ भरा प्यार होता है। वो स्वार्थ के आधार पर प्यार हमारा होता है, लेकिन बाबा परम पिता के रूप में हमें जो प्यार देते हैं वो निस्वार्थ प्यार होता है। बाबा हमारे से कुछ नहीं चाहते हैं, हमें पिता का निस्वार्थ प्यार देते हैं। इसलिए मैं बालक सो मालक हूँ, भगवान का मैं बालक हूँ, बच्चा हूँ और उनके पास जो खजाने हैं उन खजानों का मैं मालिक भी हूँ। ये स्मृति रहने से जो भी खजाने पिता से हमें प्राप्त होते हैं उन खजानों को हम यूज करते जाते हैं, जिससे वो खजाने बढ़ते जाते हैं। तो इस तरह से हमें पिता का प्यार बाबा से अनुभव करते जाना है। परिणाम स्वरूप लौकिक बाप से थोड़ा सूक्ष्म लगाव होता है, रग जुड़ी होती है, वो खत्म हो जाती है और बाबा के साथ जुड़ जाती है। दूसरा संबंध, बाबा को टीचर के रूप में हमें अनुभव करना है। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि निराकार भगवान साकार रूप में हमें आकर पढ़ाई पढ़ाएंगे, कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन हम सभी बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं जो संगम युग में सर्वशक्तिवान निराकार भगवान हर रोज दूर देश से आकर हम सभी बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो स्वयं निराकार भगवान हमें टीचर बनकर हर रोज पढ़ाते हैं, मुरली के माध्यम से ज्ञान के बहुत गुह्य राज हमें बड़े प्यार से और बड़ी सरलता से समझाते हैं और मधुर शिक्षाओं से हमें सजाते हैं और अमूल्य ज्ञान रत्नों से हमारी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं, जिससे हमारी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जाती है। तो मुझे अपने टीचर पर नाज है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है टीचर का कौन से विद्यार्थियों के सिर पर सदा हाथ रहता है? टीचर कौन से विद्यार्थियों से खुश रहते हैं? जो टीचर मुरली में हमें होमवर्क देते हैं और जो होशियार विद्यार्थी उस होमवर्क को पूरा करके फिर पढ़ाई पढ़ने आते हैं, उनके सिर पर टीचर का हाथ सदा रहता है। टीचर की दुआएं ऐसे विद्यार्थियों को स्वतः ही मिलती हैं। तो हमें इस संबंध का भी बहुत आनंद लेना है। और तीसरा संबंध है सद्गुरु का संबंध। भक्ति मार्ग में छोटी सी कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कितनी हमने मेहनत की है, कितना प्रयास किया है। अभी बाबा मेहनत से छुड़ाने के लिए सद्गुरु के रूप में हमें पालना दे रहे हैं। सद्गुरु के रूप में वरदानी दृष्टि से हमें अनेक वरदान देते हैं और अपना वरदानी हाथ अपने सिर पर सदा रखते हैं और उनके वरदानी बोल हमें अनेक वरदान देते रहते हैं। तो हम इतने भाग्यशाली आत्माएं हैं, इतना लाड़ और प्यार से वरदानों से पलते हैं और बाबा हमें वरदानों से भरपूर बनाकर वरदानी मूरत भी बनाते हैं। अभी जो बाबा का पाठ चल रहा है, ऐसा पाठ हमारा अंतिम समय चलेगा। मास्टर भगवान का रोल हमारा अंतिम समय होगा। जैसे बाबा के दो बोल आत्माओं को राहत देते हैं, दो घड़ी की दृष्टि उनको और सुकून देता है, ऐसे हमारे द्वारा अनेक आत्माओं को ये पालना मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमें बाबा को सद्गुरु के रूप में बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते रहना होगा। सारे दिन भर में सद्गुरु की छत्र छाया में चल रहे हैं, पल रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव करना है। सतयुग में आप जिस सिंहासन पर बैठेंगे, उस सिंहासन पर आपको बड़ी छतरी चाहिए या छोटी छतरी चाहिए? बोलो भाई, बड़ी छतरी चाहिए, छोटी नहीं चाहिए? देखो भाई, छोटी बहन जी कहते छोटी पसंद नहीं हमें। तो सतयुग में आपके राज सिंहासन पर बड़ी छतरी कैसी मिलेगी भाई? संगम युग में जो लंबे समय तक भगवान की छत्र छाया में, उनके वरदानों के छत्र छाया में पलते हैं, उनको इतनी बड़ी छतरी स्वतः ही मिलेगी। इसलिए उसकी तैयारी हमें अभी से करना है और बाबा हमें वो गोल्डन चांस भी दे रहे हैं। तो हमें वरदानी मूरत बनते जाना है। चौथा संबंध, भाई बहादुरगढ़ के या जो भी बच्चे आए हैं वो खास बच्चे हैं या आम बच्चे हैं? खास बच्चे हैं, बताओ भाई, खास बच्चे हैं या आम है? बोलो ना, सारे बहादुर है तो खांसी हो गए ना। सारे बहादुर बच्चे हैं, महावीर बच्चे हैं, जो भी आए। लेकिन खास बच्चे किसको कहते हैं? खास बच्चे कौन से होते हैं? खास उल्टा क्या है? सखा। जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करते हैं वो खास बच्चे कहलाते हैं। सारे खास बच्चे इस सभा में बैठे, तालियां तो बजाओ भाई। क्यों खास बच्चे कहलाते हैं? क्योंकि खास बच्चे जो भगवान को सखा के रूप में या खुदा को दोस्त के रूप में अनुभव करते हैं वो खास बच्चे कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सखा जब मिल जाता है, दोस्त हमें मिल जाता है, हम अपने दिल का राज सबसे छिपाते हैं। जहां सखा मिल गया, दोस्त मिल गया, सारे राज खोल देते हैं, दिल खोल के बात करते हैं। इसलिए हमें भगवान को दोस्त के रूप में अनुभव करना है। भगवान के साथ हमारी दोस्ती पवित्रता के प्रॉमिस के आधार पर हो चुकी है। उस प्रॉमिस को हमें अच्छी तरह से निभाना है, उस दोस्ती को और गहराई से बढ़ाते जाना है। क्योंकि अंतिम समय जब हम समस्याओं के घेरे में फंसे होंगे, उस समय आपको कोई भी मदद नहीं करेगा। आपका जो खुदा दोस्त है, वो नंगे पैर दौड़ा दौड़ा आएगा, भागा भागा आएगा और आपको मदद करेगा, समस्याओं से दूर करेगा, पार करेगा। तो उस दोस्त के साथ भी हमें दोस्ती गहराई से बढ़ानी है, उनके साथ हमें बैठना है। तुम्हें के साथ खेलूं, तुम्हें के साथ खाऊं, तुम्हें साथ चलूं, रास रचाऊं, वो सारी बातें हमें दोस्त के साथ अनुभव करना है। बहुत संगम का आनंद हमें अच्छी तरह से लेना है। पांचवा संबंध, बाबा को हमें बच्चे के रूप में अनुभव करना है। माताएं क्या कहती है, हमें कृष्ण के जैसा बच्चा मिले। अब कृष्ण तो छोड़ो, कृष्ण से भी ये सुंदर हैं, कृष्ण से भी ये शक्तिशाली बच्चा हैं। तो ऐसा शिव बाबा शक्तिशाली सुंदर बच्चा हैं, उसको हमें जरूर बच्चे के रूप में अनुभव करना है। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चा मुझे बनाएंगे तो मुझे वारिस बनाना होगा। लौकिक बच्चे को जो वर्षा देते हैं, वो वर्षा मुझे देना होगा, तभी मैं आपके साथ अच्छी तरह से ये रिश्ता निभाऊंगा। भाई आजकल के बच्चे तो बहुत स्वार्थ भरे बच्चे होते हैं, और ये जो बच्चा है हमें अंत तक साथ निभाने वाला है, परम धाम रूपी घर तक ले जाएगा और नई राजधानी में भी भेजेगा। तो ऐसा बच्चा सारे कल्प में हमें नहीं मिलने वाला है। इसलिए बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव करने के लिए बाबा को हमें वारिस बनाना है, वर्षा देना है। आजकल के जो बच्चे होते हैं, अगर बाप से उनको वर्षा नहीं मिलता है तो कहते हैं, मैं किस मुंह से आपको बाप कहूं, आपसे तो मुझे कुछ मिला ही नहीं है। क्योंकि जब तक वर्षा उसको नहीं मिलता है, तब तक वो संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, छठवां अनुभव, माँ का अनुभव हमें बाबा से करना है। दुनिया वाले कहते हैं, माँ की ममता कुछ भी हो, माँ की ममता हम भूल नहीं सकते हैं। जो प्यार माँ हमें देती है, दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता है। बात तो सही है, लेकिन माँ के साथ हमारा मोह न हो। अभी 83 जन्मों की माँ को तो हमने छोड़ दिया, अभी 84 जो माँ है जन्म की, उस माँ के प्यार में हम फंस गए भाई। तो जैसे वो 83 जन्मों की माँ को छोड़ा, ऐसी इस माँ को भी हमें छोड़ना है। तो कितनी माँ मिली है आपको बताओ, हैं जी, कितनी माँ है बोलो ना, 3 है बोलो, हाँ जी, हाँ जी, हम सभी को 6 माँ का प्यार मिल रहा है, एक माँ का नहीं, 6 माँ का, 3 बाप का। हमारे जैसा दुनिया में लाडला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। इतना प्यार दुलार हमें अच्छी तरह से मिल रहा है। पहली माँ जिसने मुझे लौकिक शरीर का जन्म दिया, दूसरी माँ जो ब्रह्मा माँ जिनके मुख से मुझे ब्राह्मण जन्म मिल गया, तीसरी माँ मम्मा जो हमें अभी भी गुप्त रीति से पालना दे रही है, बहुत अच्छी तरह से दुलार दे रही है, चौथी माँ ड्रामा रूपी माँ, जब भी कोई अनहोनी बात होती है, व्यर्थ संकल्पों का तूफान उठता है, ड्रामा रूपी माँ हमें अपने आंचल में छिपा लेती है, व्यर्थ से मुक्त करती है। पांचवी माँ धरती माँ भारत माँ, जिसके मिट्टी से ये शरीर बना हुआ है, जो हमारा लालन पाषण पोषण कर रही है, बचपन से लेकर अभी तक इतनी सारी सुविधाएं हमें ये धरती माँ दे रही हैं, और सबसे बड़ी माँ परमात्मा, सबसे बड़ी माँ वो परमात्मा है, इतना प्यार हमें दे रहा है, हमारी माँ से मिल रहा है। तो इसलिए हमें माँ का प्यार बाबा से अनुभव करना है, तो लौकिक माँ से हमारा जो थोड़ा सा लगाव होता है वो लगाव खत्म हो जाता है और बाबा के साथ में वो जुड़ जाता है। अभी सातवां संबंध, बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। बाबा ने देखो दो दुनिया में सबसे सुंदर हैं, उस शिव साजन ने रस्ते चलते मुज आत्मा रूपी सजनी का हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी सजनी बनाया। भाई कितने भाग्यशाली हैं आप सोचो तो सही। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज हैं, ऐसे काले धब्बे आत्मा पर होते हुए भी उस शिव साजन ने मुझे सजनी के रूप में स्वीकार किया। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा सजनी हूँ। हम सभी सीताओं को वो राम रावण की जेल से छुड़ाने आया हुआ है, वो साजन हम सभी सजनियों का श्रृंगार हर रोज दिव्य गुणों के आभूषणों से करता है। बस वो इतना प्यार मुझे देता है, इतना प्यार मुझे देता है, जो मुझ आत्मा रूपी सजनी के दिल में सदा उस साजन के महिमा के गीत साज सदा बजते रहें, यही हमारा लक्ष्य हो। तो बाबा कहते हैं मैं आपका साजन बनने के लिए तैयार हूँ, मुझे स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है, मैं सजनी का प्यार आपको तभी दूंगा जब आपके दिल तक तपर मुझे बिठाएंगे, तीसरे किसी को नहीं बिठाएंगे। तीसरे किसी को बिठाएंगे तो मैं तुरंत उतर जाऊंगा, ये मेरी शर्त है। तीसरे नेत्र में मैं और बाबा, लेकिन तीसरा अगर कोई बैठ गया तो तीसरा नेत्र भी काम करना बंद कर देगा, ये उसकी कंडीशन है। तो भाई कंडीशन तो पसंद है ना हमें, हम सभी सजनियों ने, आत्मा रूपी सजनियों ने उस शिव साजन को अपने दिल रूपी तख्त पर बिठा दिया, अपनी दिल रूपी डिब्बी में उसको छिपा कर रखा है। भगवान के दिल में हम रहते हैं और भगवान हमारे दिल में रहता है, इससे ऊंचा भाग्य इस संसार में नहीं है, और वो भाग्य हम महान आत्माओं को मिल रहा है। ठीक है भाई, आठवां संबंध, बाबा को हमें रक्षक के रूप में अनुभव जरूर करना है, क्योंकि निर्भय तभी हम अनुभव करते हैं जब सर्वशक्तिवान मेरा पाठी राखा बैकबोन होता है, सर्वशक्तिवान का हाथ मेरे सिर पर रहता है, तो हम निडर रहते हैं, निर्भय रहते हैं, फियरलेस होकर रहते हैं। सतयुग में राजा महाराजा बनने का पहला गुण है निर्भयता, निडरता। वो गुण जब तक नहीं है सतयुग में राजाई हमें नहीं मिल सकती। अब खुद ही डरपोक होंगे तो हम राजाई को कहां, प्रजा को कहां संभालेंगे भाई। इसलिए निर्भयता को अनुभव करने के लिए सर्वशक्तिवान सर्वोच्च रक्षक मेरे साथ होता है और उनका हाथ मेरे सिर पर रहता है। भय नाम की चीज मेरे पास नहीं होती है। निर्भय होकर मैं आत्मा सदा रहती हूँ और बहुत अच्छी तरह से उनका साथ सदा अनुभव करती हूँ। अगर आप रास्ते में चलते हैं, पुलिस फोर्स अगर मिलिट्री या पुलिस फोर्स आपके पीछे पीछे चलता है, आप बिल्कुल निर्भय होकर रहेगी, मुझे कोई अनर्थ नहीं कर सकता है मेरे साथ, क्योंकि पुलिस है मिलिट्री है। ऐसे सर्वशक्तिवान रक्षक का अगर हम अनुभव करते हैं तो किसी भी प्रकार का डर हमारे दिल में नहीं रहता है। इसलिए वो संबंध भी हमें अच्छी तरह से अनुभव करना है। फिर बाद में नौवा संबंध है, हम देखते हैं कोई ऐसा कड़ा संस्कार होता है, पुराना संस्कार होता है, उसको परिवर्तन करने का हम बहुत प्रयास करते हैं। हर प्रकार की युक्तियां, विभिन्न जो भी बाबा हमें विधियां बताते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, फिर भी उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, उसमें हमें दिल से कष्ट नहीं होना है। इसे परिस्थिति में सुप्रीम सर्जन को आह्वान करो, उसको बुलाओ, बाबा सुप्रीम सर्जन बनकर इस संस्कार की सर्जरी कर दो, इस बीमारी को सदा के लिए खत्म कर दो। ऐसा आप आह्वान करेंगे सुप्रीम सर्जन आकर आपकी सर्जरी संस्कार की करेगी और आपको पुरानी बीमारियों से स्वतंत्र करेंगे। तो जैसे स्थूल सर्जरी करने के लिए हम डॉक्टर को सरेंडर हो जाते हैं, वैसे बुद्धि के द्वारा इस सुप्रीम सर्जन को हमें सरेंडर होना है। उसके बाद ऑटोमेटिक वो हमारे पुराने संस्कार की या पुराने बीमारी की सर्जरी करते हैं और उस बीमारी से हम सदा के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। ये बहुत सुंदर शॉर्टकट मेथड है। तीव्रता से आगे अगर बढ़ना है तो उसके लिए इस विधि को हमें जरूर अपनाना है। और नौवा संबंध कौन सा है जी? दसवा संबंध है बाबा को गाइड के रूप में अनुभव करना है। जब भी हम दुविधा में फंस जाते हैं, हम मून जाते हैं, ये करूं या वो करूं समझ में नहीं आता है, उस समय बाबा को गाइड के रूप में आह्वान करो, बुलाओ और बाबा मुझे गाइडेंस चाहिए, क्योंकि दुनिया में जो गाइड करते हैं वो कल का क्या होगा वो भी नहीं जानते हैं। ये गाइड तो तीनों कालों को स्पष्ट अच्छी तरह से जानता है और ये लौकिक गाइड हो गए, वो उनका कोई ना कोई स्वार्थ भी होगा, इसलिए स्वार्थवश वो गाइडेंस गलत भी दे सकते हैं। लेकिन बाबा जो गाइड हैं, वो निस्वार्थ रीति से तीनों कालों को जानकर हमको गाइडेंस देते हैं, उसमें ही हमारा कल्याण होता है। तो आगे चलकर भी ऐसा बाबा गाइड करेंगे जैसे स्थूल रीति से माँ बाप बच्चों को गाइड करते हैं, ऐसे बाबा हमें गाइड करेंगे, इधर नहीं जाओ, इधर जाओ, ये नहीं करो, ये करो, इसमें आपका कल्याण है। ऐसे बाबा विनाश के समय हमें गाइड करेंगे, लेकिन अभी से वो संबंध अच्छी तरह से हम अनुभव करते जाएंगे तो विनाश के समय भी बाबा का मदद, बाबा का वो संबंध हमें मदद करता रहेगा। इसलिए बाबा को गाइड के रूप में बार बार अनुभव करते जाना है। और दूसरा संबंध है, बाबा को धर्मराज के रूप में भी अनुभव करना है। आप कहेंगे भाई धर्मराज से तो डर लगता है, धर्मराज का संबंध अनुभव करने की क्या जरूरत है? देखो, किसी एक का डर होना बहुत जरूरी है। परिवार को बाप अगर प्यार करता है तो माँ डांट लगाती है बच्चे को, अगर माँ प्यार करती है तो बाप डांट लगाता है। अगर दोनों ही प्यार करेंगे या दोनों ही डांट लगाते रहेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। इसलिए बाप के रूप में हमें बाबा तो प्यार देते ही हैं, लेकिन धर्मराज के रूप में बाबा का डर अनुभव करना बहुत जरूरी है। बाबा धर्मराज के रूप में मुझे हर घड़ी देखता रहता है, मैं छोटी सी भी भूल नहीं कर सकती हूँ। इसलिए छोटे विकर्म करने से, पाप कर्म करने से हम बच जाते हैं और हमारा नया पाप कर्मों का खाता नहीं बनता है। ये लाभ उस संबंध से हमें होता है। वंडरफुल स्थिति बनाना है तो वंडरफुल, एक का डर फुल हो, पूरा हो, तो हमारी स्थिति वंडरफुल होगी। इसलिए उस में भी हमारा कल्याण समाया हुआ है। तो इस तरीके से एक बाबा से रस विभिन्न प्रकार के अनुभव करते जाएंगे तो एक रस स्थिति की अनुभूति बढ़ती जाएगी। देखो, आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, रसगुल्ला आपने भरपेट खाया और रसगुल्ले से बढ़कर और कोई चीज आपको खिलाने के लिए किसी ने ऑफर की, आप कहेंगे भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं फुल हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। जिस समय हम फूल होते हैं उस समय माया हमें YWL फूल अर्थात मूर्ख बना नहीं सकती है। जिस समय हम फूल होते हैं तो कोई भी आत्मा, व्यक्ति, वैभव हमें फूल अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। इसलिए एक बाबा से सर्व रसों की प्राप्ति करते रहें और स्वयं को भरपूर करते रहें, फुल अनुभव करते रहें, तो हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं जा सकती है। माया के प्रलोभन, इस पुरानी दुनिया की बातें हमें आकर्षित नहीं कर सकती हैं। इस संसार में रहते हुए बाबा ही हमारा संसार अनुभव होता है। कमल फूल के भांति हम इस पुरानी दुनिया से न्यारे और एक बाबा के प्यारे अनुभव करते जाते हैं। ये समय वर्तमान समय की पुकार है। बाबा ये चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारी बुद्धि पर वार करने वाली अनेक बातें आएगी, हमारी बुद्धि को आकर्षित करने वाली अनेक बातें आएगी, फिर भी ऐसे परिस्थिति में बुद्धि रूपी तार को कोई अपने तरफ आकर्षित करके जोड़े, ये नहीं हो सकता है। हमने देखा ब्रह्मा बाबा एकांतवासी बनकर रहे, इतने यज्ञ के कारोबार चलते रहें, निभाते रहें, बच्चे अगर एक घंटे का समाचार सेवा का समाचार सुनाते थे, बाबा उसको दो मिनट में सार रूप में एक के अंत में स्थित होकर उसको समझ लेते थे और बच्चों को इसका रिस्पॉन्स भी देते थे और बच्चे खुश भी हो जाते थे। तो कारोबार को व्यस्त होते हुए संभालते हुए भी एकांत वासी बनकर रहे और एक रस स्थिति में सदा अचल डोल रहे। एक बाबा ही मेरा संसार है ऐसा बाबा अनुभव करते रहे। तो हमारे सामने ब्रह्मा बाबा का ज्वलंत उदाहरण है। तो बाबा को हमें केवल फॉलो करना है। कई कहते हैं बहुत बिजी हम रहते हैं, ऐसे बिजी समय में बुद्धि बहुत व्यस्त रहती है, ऐसे समय में हम बाबा को याद नहीं कर सकते हैं, बाबा के तरफ बुद्धि लोग नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा को हमें फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा की कार्बन कॉफी बनना है और बाबा जैसी एक रस अचल अडोल स्थिति हमें बनाना ही है, ऐसा दृढ़ लक्ष्य हमारा हो। तो क्योंकि साक्षात्कार की धूम अंतिम समय बहुत मचने वाली है, यज्ञ के आदि काल में साक्षात्कार की धूम मची थी, ऐसे यज्ञ के अंत में भी साक्षात्कार की धूम मचेगी। लेकिन कौन सी आत्माओं का साक्षात्कार बाबा कराएंगे? जो बच्चे एक स्थिति में स्थित रहेंगे, बाबा साक्षात्कार की चाबी के द्वारा उनका ही साक्षात्कार अनगिनत आत्माओं को कराते रहेंगे। इसलिए समय आने के पहले अस्थिति हमें बनाना ही है, ऐसा दृढ़ लक्ष्य हमने रखना है। अभी हमने केवल रिपीटेशन करना है, नई बात हम नहीं कर रहे। कलप कलप हमने ऐसी एक स्थिति की अनुभूति की थी, इस कलप भी हमने उसको दोहराना है, ऐसा सकारात्मक हम सोचें तो ऐसी स्थिति हम बनाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तीन शब्द हमेशा याद रखें, एकांतवासी बनना है, अकेले में रहना है और अकेले बाप को एक रस स्थिति में स्थित होकर याद करते रहना है और पूरी एकाग्रता को मेंटेन करना है। क्योंकि एकाग्रता से उच्च कोटि का योगाभ्यास हम कर सकते हैं, बिना योगा एकाग्रता के बिना ऐसा ज्वाला स्वरूप योग अर्थात शक्तिशाली योग हमें अनुभव नहीं होता है। इसलिए एकाग्रता की शक्ति को भी हमें बढ़ाना होगा। इसलिए एकांत में बैठकर एक स्थिति को बढ़ाते जाएंगे तो एकाग्रता बढ़ती जाएगी और श्रेष्ठ स्थिति बनाने में हमें सफलता मिलती जाएगी। ओम शांति। अभी हम 15 मिनट ऐसी पावरफुल एकांतवासी बनकर एक स्थिति की अनुभूति करने जा रहे हैं, एक बाबा के प्यार में खो जा रहे हैं। सभी थोड़ा चुस्त और मस्त होके बैठेंगे, एकदम आजाद पंछी बन के हो बैठेंगे, सब फ्री होके बैठो, बंधन कोई भी नहीं हो, सब हटा दो, फ्री होके बैठो। ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य पिंजड़े में मैं आत्मा रूपी आजाद पंछी विराजमान हूँ। इस शरीर रूपी पिंजड़े में होते हुए भी पिंजड़े के भान से मुक्त हूँ। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा पंछी शांत स्वरूप हूँ, शांति की किरणें मोज आत्म पंछी से चारों ओर फैल रही है। परम शांति की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा पंछी द्वापर युग से माया का गुलाम बन गया था। भगवान ने मुझे आजादी प्रदान की। मैं जब चाहे इस देह रूपी पिंजड़े में आ सकता हूँ, इस पिंजड़े से जा सकता हूँ। मैं आत्मा पंछी इस देह रूपी चैतन्य पिंजड़े से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर मैं आत्म पंछी परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। इस विश्व के गोले से पार मैं आत्म पंछी उड़ता हुआ जा इन पांच तत्वों से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूँ। ओहो मैं आत्म पंछी फरिश्तों की नगरी में पहुंच गया हूँ, जहाँ चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य पंछी ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की परिस्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस यार। मैं आत्मा फरिश्ता रूप में बाबा के समक्ष विराजमान हूँ। बाप दादा फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। फरिश्तों का राजा प्यारा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों मुझ फरिश्ते को नजर से निहाल कर रहे हैं। मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद ले रहा हूं। बाबा ही बाबा मुझे नजर आ रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा रूपी पंछी पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूं। जा रहा हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्म पंछी स्वीट साइलेंस होम में बैठा हूं। स्वीट साइलेंस, डीप साइलेंस की अनुभूति कर रहा हूं। और मेरे प्राणों के प्राण सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव पिता मेरे समक्ष विराजमान हैं। मैं आत्मा बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों की अथाह सागर है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति बाबा के सुंदर छवि को देख रही हूं। बाबा से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा की ओर आ रही है। मैं आत्मा शक्तियों के सागर शिव पिता से अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। क्या कहने मेरे भाग्य का, वहरे में वहां मेरा भाग्य और वहां मेरे बाबा। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर शिव पिता से महामिलन का आनंद ले रही हूं। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही हूं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, सर्व रसों के भंडार शिव बाप से, मैं आत्मा सर्व रसों की अनुभूति कर रही हूं, सर्व रसों से भरपूर हो रही हूं, सर्वशक्तिवान परमात्मा से मुझे रसना भासना पालना मिल रही है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। एक रसस्थिति की अनुभूति हो रही है, शक्तियों से भरपूर आत्मा, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापी वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई आ रही हूं, और इस शरीर रूपी चैतन्य पिंजरे में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं। मौज शक्तिशाली आत्म पंची से शक्तियों की सजीव तरंगे वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ओम शांति शांति शांति।